أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اب ہم بات کریں گے بنیادوں پہ. ابھی تک جتنی بات ہم نے کی, اسلام کیا ہے, اسلام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مختلف ادوار سے لیا رکھا, اور کائنات کا دین بھی یہ ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, فاؤنڈیشن ہوتی ہے, تو اسلام کی کتنی بنیادیں, اور اسلام کے اندر آتے ہوئے کیا چیز کب کرنی ہے یا کیسے ہے. اس موضوع کی تھوڑی سی اہمیت کا آپ کے سامنے ایک اندازہ رکھنا چاہوں گی, اور وہ کیا ہے کہ میں نے آج کے دور میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بڑے تپاک سے سوشل ورک کرتے ہیں. جب آپ ان سے نماز پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو دین ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رزق حلال کمانے میں انتھک محنت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے فرائض کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ بس نماز نہیں پڑھی جاتی, باقی تو ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں تو وہ نماز تو بڑے تپاک سے پڑھتے ہیں, لیکن ان کی گھریلو زندگی, خاندانی زندگی میں دھوکہ بھی آ سکتا ہے, جھوٹ بھی آ سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. جو مجھے ترس آتا ہے لوگوں پہ وہ کیا آتا ہے کہ اسلام کے نام پر خود کو مسلمان کہنے کہلانے والے لوگ بھی آج ایک دوسرے کو وہ خوشی نہیں دے پا رہے جو سچے اسلام سے آتی ہے. مثلا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو رشتہ کیا تھا حافظ لڑکا دیکھ کر, لیکن وہ تو ان خرابیوں میں شکار تھا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مائیں کہتی ہیں یہ حفظ کر چکا ہے, نماز نہیں پڑھتا. بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں ان کا تو حال حلیہ ہی گوروں جیسا ہے, کلین شیو ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کو نماز کا بڑا شوق ہوتا ہے الحمدللہ. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان اپنے اوپر لے کر سوچے تو اس کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. تو جو چیز آج ہم پڑھنے والے ہیں, اس کے جو رائٹر ہیں وہ اپنے ذاتی ایک دو تجربات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں مگن تھا, کاروبار, جاب, اپنی جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں میں اسی میں تھا. تقریباً 19 سال تک کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کی بھی ملازمت کی, افسری کے درجے پہ بھی تھا, اور خیال میرا یہ تھا کہ میں اپنے قوم اور ملت کی خدمت کر رہا ہوں, لیکن پتہ چلا کہ وقت ضائع ہو گیا. میں آپ سب سے بھی پوچھوں گی اور خود سے بھی, اپنی عمر لکھیے, جو بھی ماہ و سال ہیں اس کو اندازن لکھیے, اور خود سے پوچھئے کہ کیا کہیں یہ حال تو نہیں کہ اب کہیں جا کے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمر صرف کر دی ہے بہت اور بقایا کم ہے. ابھی تک میں نے اور آپ نے اپنی اس عمر مبارک سے کیا حاصل کیا؟ میں نہیں کہتی کہ کچھ نہیں حاصل کیا, آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا. ذاتی آپ کی گرومنگ ہوئی, آپ نے میٹرک کیا, ایف اے کیا, بی اے کیا, ماسٹرز کیا, آپ کی شادی ہوئی, آپ کے 4-6 بچے ہوئے, خصوصرال کو آپ نے خوش کیا. کیا ہوگا ضرور لکھیے. کچھ نے یہ سب کچھ نہیں بھی کیا ہوگا, صرف اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہا ہوگا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, ان سالوں میں میں نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے کیا میرے لیے وہ کافی ہے؟ کیا میری زندگی اللہ کے در پہ جھکی ہوئی زندگی ہے؟ میری ابھی تک کی زندگی میں اللہ کے راستے کو کتنی حیثیت حاصل ہے؟ ایک شعر لکھا ہے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس در کی گدائی, یعنی اللہ کے گھر کے آگے بندہ بیٹھ جائے نا, یہ بات سمجھ آئی مگر دیر سے آئی. آج وہ لوگ جن کو اللہ اپنے دین کی خدمت کا موقع دے دے, ان سے بڑا خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہے. لیکن زندگی گزرنے کے بعد اس بات کا خیال آتا ہے, کبھی آپ نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہو اگر, پھر آپ اس درد کو محسوس کریں اور اس سے جو خوشی ملتی ہے اس کو محسوس کریں. آپ میں کوئی خوبی نہیں ہوتی, اللہ آپ کو کام دے کر خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. آپ سوچتے میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. آپ میں سے جو سسٹر اس وقت 40 یا 40 سے اوپر یا اس کے قریب ہیں, ان کے لیے بھی مایوسی کا کوئی نقطہ نہیں ہے. کیوں کہ ہر نبی کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی تھی, اور آپ دیکھیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا आप और मैं आज इस मौजू पे, जो बड़ा अहम मौजू है, इस पे बात करेंगे इस शौक के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात को अपना हदफ और मकसूद ठहराना है, किसी ज़ाती ओहदे ऑनर और किसी ऐसे प्रोटोकॉल को पाने को पीछे करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को हदफ बनाना है। इन्ना लिल्लाह या इन्नी वज्जहत वजहिया लिल्लाह। जब आप इखलास के साथ अल्लाह के रास्तों में निकल पड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है। दूसरी एक छोटी सी चीज़ जिसको आपके सामने रखा जा सकता है, वो क्या है? इस रास्ते में आपकी मुखालफत हो, प्रोपेगंडे हो, कोई आपकी लेग पुलिंग करे, मनफी ताकतें हों, आपने उस पर नज़र नहीं रखनी। राइटर हैं जो हमारे सामने ये किताब है, ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में गुजर रहा था, लेकिन किसी शख्स ने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम क्या दुनियादारियों के कामों में पड़े हो, सीखो। 40 साल की उम्र में ये सफ़र शुरू किया और फिर इन दो बातों पे अमल किया। नंबर एक, अल्लाह की ज़ात को हदफ बनाना और उसी को मकसूद, दो चीज़ें मकसूद। और इसको अरबी में भी कहते हैं कि ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। मेरा मकसद कुछ भी नहीं सिवाय ये कि मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। ला मतलूबा इल्लल्लाह, मुझे अपने रब के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि इस रास्ते में फिर कोई भी खिलाफ़ तबा या खिलाफ़ तबीयत काम आ जाए तो मैंने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखना। आप कह लीजिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। बस ये दो खूबियाँ आप अपने अंदर रख लें, मरते दम तक अल्लाह आपसे अपने दीन के काम लेगा। और खुशबख्त होते हैं वो लोग जो मरते वक्त भी यही बात हो कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रहेगी बात कि अगर मैं और आप अल्लाह ताला के किसी दीन के काम के अंदर काम आ जाते हैं, तो इन्होंने भी एक शेर लिखा है, कहते हैं कि फारसी का शेर है जिसका उर्दू तर्जमा क्या है कि बादशाह पर एहसान न धरो कि तुम उसकी खिदमत में लगे हुए हो, इसका एहसान मानो कि इसने तुम्हें अपनी खिदमत में कबूल फरमा लिया। तो असल बात यह है, और मैंने देखा है ऐसे लोग जो वाकई थोड़ा देर से सफ़र शुरू करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उनको वो सारी कमियां पूरी करवा देता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस्लाम की बुनियादें कौन सी हैं। तो आप पेज नंबर 1 खोल लीजिए, इस्लाम की 4 बुनियादें हैं। आप थोड़ा सा मेरी बात समझिए, उसको आप चाहें तो बुक के साइड्स पे नोट्स में रख लिख लिया करें, नोटपैड बना लें, कॉपी पे लिखें, जो अब आपका दिल चाहे। लेकिन हम अपनी सीरीज में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इस बुक के साथ हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन बुक आपका एक टूल होगी और आप इसको देखेंगे कि इस्लाम की फाउंडेशन क्या है। पहले तो उस फाउंडेशन को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये आप मेरे सामने रखा हुआ टेबल, बल्कि अपने सामने रखे हुए टेबल्स भी देख रहे हैं, आम तौर पे जो वाकई वर्केबल टेबल्स होते हैं उनकी कितनी टांगे होती हैं? 4 होती हैं, कभी कभी 2 भी हों अगर बीच में मिडल में, तो नीचे से चपटा कर दिया जाता है। कभी गोल टेबल भी बना दिए जाते हैं, लेकिन वो मोर प्रैक्टिकल नहीं होते। इसी तरह हर स्टेबल चीज़, कारामत चीज़, जिस तरह 4 बुनियादों पे या 4 टांगों पे खड़ी होती है ना, इस्लाम की भी 4 बुनियादें, बुनियाद कह लें, टांग कह लें, कुछ भी कह लें। बचपन से हम एक लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं, हकूकुल्ला। अब आप चाहें तो इसको एक छोटे से मैप की सूरत में बनाएं, मैं इसका अपने में एक ग्राफ बनाती हूँ। बुनियादी तौर पर 2 हिस्से हैं हमारे दीन के, हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद, ऐसी है ना। हकूकुल्ला के नीचे फिर एक डाउन एरो लिखिए और उसकी 2 हिस्से बना लें। हकूकुल्ला की फिर 2 बुनियादें हैं या किस्में हैं, एक को कहते हैं अकायद और दूसरे को कहते हैं इबादत। दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद की 2 बुनियादें थी, अब इसकी फिर 2 मुख्तलिफ बुनियादें हैं, अखलाकियात और मामलात। तो नोट कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि दीन की 4 बुनियादें हैं। फाउंडेशन ऑफ रिलीजन इज बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। नंबर 1 अकायद, इसको बिलीफ कहते हैं। नंबर 2 इबादत, वर्शिप। इन दोनों को नीचे लिख लीजिए, ये हकूकुल्लाह में आती हैं, यानी बंदे का अल्लाह पर हक क्या है, या अल्लाह का बंदे पे हक क्या है कि बंदे का अकीदा अल्लाह के मामले में दुरुस्त हो। अब ये क्या है, इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे हम। इंशाल्लाह ये अगर मज़मून सीधा हो गया ना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि पूरे कुरान की तफसीर आपको दोबारा याद आ जाएगी। अल्लाह के बंदे पर दो हक हैं। नंबर एक, इंसान अल्लाह को पहचाने जैसा वो है, लैसा कमिस्लिही शैयुन। अकीदे में बहुत बारीकियाँ आती हैं। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पर इंसान का ईमान हो, अल्लाह की कुदरत का यकीन हो, उसकी पकड़ का यकीन हो, उसके अलवहाब होने का यकीन हो, उसके जुंतकाम होने का भी यकीन हो। यानी आप अकायद को ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए नीचे लिख लीजिए, अल्लाह की हस्ती को वैसे ही पहचान लें जैसे वो है। यानी मैं अब अपने पास से आपको ये जुमला बोल रही हूँ कि अकीदा क्या है कि आप अल्लाह की असल हस्ती को पहचान लें और जैसा उसके साथ ताल्लुक होना चाहिए वैसा ही आपका ताल्लुक हो, और जो नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ना हो। और इसके बरक्स इबादत क्या है? बंदे की औकात। ये दो बातें हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। अल्लाह के हकूक में क्या है कि पहली बात है अल्लाह की हैसियत को पहचाने और दूसरी इबादत क्या है, अपने अब्द होने को जाने। लिख लीजिए, ये जुमला आपको फ़ायदा देगा। इन्हीं दो बुनियादों का जिक्र कुरान पाक की पहली सूरत में, कोई बता सकते वो आयत? पहली सूरत में ये दो बुनियादें एक जुमले में समो दी। ठीक, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये नस्ताइन के या कायद है कि जब तेरा जो पता चल गया तो इतनी बड़ी हस्ती है तो हम किसी और के आगे क्यों झुके, इतने बड़े दर को छोड़ के कोई छोटा दर तो कबूल नहीं करता। और या का ना बुदू क्या बंदगी, मैं इतना छोटा कि तेरे आगे पर नहीं मार सकता। तो दो चीजें हैं हकूकुल्ला में, अपने आप को भी पहचानिए और अपने मालिक को भी पहचानिए। जब तक इंसान अपनी हस्ती को नहीं पहचानता ना, काम नहीं करता। अक्सर एक मिसाल देती हूँ, यहाँ आपको फायदा देगी, लिख लीजिए। आपकी मेड आपके घर में आए और आप उसको कहें कि ये बाथरूम साफ कर लें, ये किचन साफ कर लीजिएगा, थोड़ा ये ऊपर का भी कर दें, तो वो खुश होगी। क्यों? जितने घंटे लगाएगी उतने पैसे मिलेंगे आपसे। ज़्यादा काम का मतलब यह है कि स्टिल आपको उसकी ज़रूरत अगले हफ्ते या अगले महीने फिर बुला लेंगी। वो तो खुशी से ये काम लेकर चल पड़ेगी और काम शुरू कर देगी और खूब वक्त लगाकर, बल्कि दो की बजाय 4 घंटे लगा के जाएगी। इसके बरक्स अगर आपकी बहुत मॉड स्कॉट फ्रेंड आपके घर में आए, जो बड़ी आला अफसर की बेगम भी हैं और बहुत प्रोटोकॉल वाली हैं, सेम मैसेज आप उनको भी आते ही दें कि अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, ज़रा ये मेरा किचन तो है साफ कर दें और ज़रा ये नीचे का टॉयलेट है इसको तो खूब चमका दें और ज़रा क्लोज़ेट भी साफ करें। वो कहेगी व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है, तुमने मुझे ये समझा? सवाल पैदा होता है कि पहली औरत आपकी बात सुनकर खुश हुई, दूसरी औरत नाराज क्यों हुई? फर्क समझ आ गया? पहली को अपनी औकात पता थी कि मैं बंदी हूं, मेरा काम मानना है, और दूसरी के अंदर अकड़ थी कि मैं को तुम्हारी बंदगी में हूं, मैं तुम्हारी गुलाम हूं। बस यही रवैया और एटीट्यूड एक इंसान को अल्लाह का बंदा बनाता है। जब मुझे आपको अपने बंदे होने का यकीन होता है ना और रब के मालिक होने का यकीन होता है तो हम दीन के अहकाम सुन के खुश होते हैं। चलो आज कुछ काम मिल गया। सुबह उठते ही बंदा बिस्तर से उठता है तो कहता है, जैसे वो मासियां आती कह जी बाजी बताओ क्या करूं, गुलाम हाजिर, मासी आ गई। बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दे, अल्लाह जी सुबह हो गई है, बंदी हाजिर है, हुक्म करें करना क्या। तो ये है इबादत। ये दो चीजें जुड़ती हैं तो आप इसको हकूकुल्ला कहते हैं। इसके ऑपोजिट हेज पे लिखिए हकूकुल इबाद। इसकी फिर आगे दो बुनियादें हैं। नंबर एक, अखलाकियात। एह नहीं होता, आह होता, ये याद रखिए। हम उर्दू में सारे आह को एह कहते हैं, एहसान अखलाक नहीं, बाप अफ आल का वजन याद रखिएगा। तो पहली क्या है? अखलाकियात, खुलक से हमारा दूसरों के साथ अखलाक क्या है, एथिक्स कैसे है। हम लोगों के लिए एक फूल है खुशबू देने वाला या बदबू की पोटली है जो उनकी बुराइयां ही करती हैं। हम गीबतें करने वाले हैं या हम लोगों को दुआएं देने वाले हैं। ये होती है मोमेंट बाहर के लोगों के साथ, यानी बस जिनसे कभी कभी ताल्लुक पड़ता है, स्माइली और उनकी बुराई ना करना, यानी आप कह लीजिए कि ये एक थोड़ी वाइड स्प्रेड थिंग है। लेकिन दूसरी चीज है मुआमलात, डीलिंग्स। ये माँ का क्या मामला, बीवी होने के नाते, बहन होने के नाते, बहू होने के नाते, सास होने के नाते, इन दोनों को जमा करें तो ये बंदों के हक के हम पे। खुलासा कर देती हूँ, हमारे दीन की चार बुनियादें हैं। दो का ताल्लुक हुकूकुल्ला से, दो का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल्ला से जिनका ताल्लुक है वो एक तो अकायद में आती हैं, बिलीफ है अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, कैसे हैं, सब कुछ। और दूसरी इबादत है, बंदे को क्या करना है, बंदे की क्या हैसियत है। फिर हुकूकुल इबाद में दो चीज़ें, अखलाकियात और मामलात है। अब ये चारों हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एक जनरल चीज़ थोड़ी सी हम बात करते हैं, शुरू करेंगे हम अकायद को। अब देखिए, अकीदा का लफ्ज़ अकद से है, आइन काफ दाल। अकद अरबी जुबान में कहते हैं गिरा को, नॉट लगाना। आपने पुराने कार्ड्स में देखा होगा, शादी के कार्ड पे लिखा जाता था अकद मसनूना। अकद कहते हैं निकाह को, गिरा लगाने को, और मसनूना सुन्नत से, यानी सुन्नत के मुताबिक लगाना। यही लफ्ज जो है सूरत मायदा के शुरू में भी गुजरा है, उकदा बिल उकूद के मानों में, लाइबिलिटीज, पाबंदियां, अहद। जब हम लफ्ज अकीदा बोलते हैं ना, तो लिख लीजिए, एक दो जुमले बोल देती हूँ, शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते ही एक रिश्ता जुड़ता है बंदे का अपने रब से, उस अहद को अकीदा कहते हैं। बस लोग आज फिक्र और अकीदे में फर्क नहीं कर पाते, आपस में दो मस्जिदों वाले इस बात पे झगड़ते हैं कि वो हाथ उठाते हुए रफुल जदैन करते हैं नमाज में और दूसरे नहीं करते, और कहने वाले ना समझ लोग क्या कहते हैं, उनका अकीदा नहीं हमसे मिलता। क्या मतलब, वो जी रफुल जदैन करते हैं, अच्छा वो औरतें झुक के नमाज पढ़ती हैं, वो ऊंची पढ़ती हैं, अकीदा नहीं मिलता। तो ये बेवकूफ़ी है। अकीदे का ताल्लुक ना तो नमाज के रिचुअल से, ना हाथ उठाने से, ना नीचे उठाने, वो फिक्र है। बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पर आज जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ अकीदे और फिक्र का फ़र्क नहीं करते। अकीदा क्या है, जो अल्लाह के नबी का कुफारे मक्का के साथ था। थोड़ा सा उसी जगह आपको ले जाती हूँ जहनी तौर पर, जहाँ से ये दीन शुरू हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लम जिस सोसाइटी में भेजे गए थे, मक्का की सोसाइटी थी, खुद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहते थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे जो इनकी तरफ भेजे गए, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद से अरबों में अपना कोई नबी नहीं आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तो लिहाजा नबियों की औलाद थी, लेकिन चूंकि बीच में अंधेरा बहुत छा गया ना, वक्त बहुत गुजर गया, 4000 साल से भी ऊपर, तो मक्का वालों के जहनों पर धूल जम गई। नतीजा क्या निकला, नमाज पढ़ते थे लेकिन तालियां और सीटियां बजाते थे, हज करते थे लेकिन बुतों के नाम के तवाफ करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक कहते थे लेकिन उसमें ऐड कर लेते थे कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर हमारे वो बुत जिनको तू खुद अपना शरीक बना ले। कह लीजिए कि उनके मुताबिक ईमान क्या था, किसी भी पोटली में रखी हुई एक अलग चीज। बात करें तो कहते थे हम अल्लाह को मानते हैं, तो भाई ये देवियां, ये बुत, ये क्या कहते थे, ये तो बस हमें अल्लाह का कुर्ब देते हैं। तो याद रखिए एक जुमला, इन्होंने भी नोट किया, आप इस बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, ईमान का ताल्लुक अमल से है। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि ईमान की सिर्फ दो शराइत है, कंडीशंस ऑफ फेथ आर ओनली टू। नंबर एक, इकरार बिल लिसान, सिर्फ जुबान से वेरीफाई करना, इसके नीचे लिख लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ठीक है, 100 दफा पढ़ें, लाख दफा पढ़ें, कलमे की तस्बीहें पढ़ते जाएं। लोग कहते हैं पहली शर्त यह है कलमा पढ़ें, जी कलमा पढ़ो। और दूसरी शर्त क्या है, तस्दीक बिल कल्ब, यानी दिल से पढ़ो। मस्जिद में जब मौलवी साहब के सामने कोई शख्स आता है और कहा जाता है कि ये कलमा पढ़ेगा, तो मौलवी साहब उसे कहलवाते हैं, वाकई इस्लाम लाते हो? कोई और मतलब तो नहीं है? किसी औरत से शादी की नीयत तो नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह के नबी और अल्लाह की बात पे यकीन है? हाँ हाँ है। कहते हैं मुबारक मुबारक मुबारक, ख़त्म। यानी मिस अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी में कि ईमान दो चीज़ों का नाम है, एक ज़ुबान से इकरार करना और दूसरा दिल से इसकी तस्दीक करना। हम इसी को ईमान समझते हैं, और देखा जाए तो नज़रियाती यानी देखने की नज़र से देखें तो ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन अगर आप मक्का मुकर्रमा और मदीना के किसी उस्ताद या किसी आलिम के सामने यही बात कहें तो वो आपसे शदीद इख्तलाफ करेगा। क्या कहेगा? ईमान की एक तीसरी शर्त भी है जिसको अमल बिल जवारेह कहते हैं। जवारेह क्या है? जरहन से जराहा, फाइव लिम्स, यानी हमारी आंखें, कान, जुबान, हाथ, जो चीज़ें कुछ कर सकती हैं उनको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक लगाना। हमारे हाथ पांव, जुबान, आंखें, कान इस ईमान का साथ भी दें जिसका हम दावा करें, इसको हाईलाइट कीजिएगा। यानी आंखें भी मुसलमान हों, पांव भी मुसलमान हो, जुबान भी, कान भी, इसका एक साथ भी दें जिसका हम ईमान कर दावा कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हमारे दावे का साथ नहीं दे रही तो इसका मतलब क्या है कि ईमान अपनी जगह पर मौजूद नहीं। अगले जुमले को हाईलाइट कीजिएगा, ईमान को जांचने का मेयार सिर्फ और सिर्फ अमल है। यही अमल तो ये साबित करेगा जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, क्या वो ब्रोएकार भी आ रहा है कि नहीं। और ये हरमैन के उलमा यानी खाना काबा में और सऊदीया में जो आलिम है वो एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहते हैं कि तस्दीक बिल कल्ब तो हमारे बस में नहीं है ना, किसको जाने, राइट और रॉन्ग। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े आपके सामने तो आपको नहीं पता कि ये बेचारा दिल से पढ़ा कि नहीं। आपने वाकया पढ़ा है कुरान पाक में, हजरत उसामा को गलती लग गई थी जब एक जंग में एक चरवाहे ने उनको देख कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो आपने कहा कि तू तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, उसको मार दिया कि जान बचाने के लिए पढ़ रहा है। जब नबी सल्लम के पास आए और आपने कहा कि तेरे सामने उसने कलमा पढ़ा तूने फिर भी उस पर हाथ उठा लिया, कहा कि नबी उसने ऊपर से पढ़ा था, तो आपने फरमाया क्या तूने उसका दिल खोल के देखा था, राइट। तो मैं और आप किसी के दिल को तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। इकरार बिल लिसान तो सभी करते हैं, ये दूसरी बात है, इसको भी नोट करें। यानी दिल को हम जानते नहीं हैं और जुबान से सभी इकरार करते हैं मुसलमान होने का, हत्ता के मोमिन भी करता है, एक मुनाफिक भी करता है। तो फिर कैसे पता चले कि किसका ईमान सही है कि नहीं? तो देखने के लिए फिर हमारे पास कोई जरिया इसके सिवा नहीं कि हम उसके अमल को देखें, क्या वो उसकी जुबान की तस्दीक कर रहा है कि नहीं। मसलन एक शख्स कहता है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अजान हो रही है लेकिन मैं दुकान बंद नहीं करता, नमाज के लिए नहीं जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो गुनाहगार आदमी है, तू नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि हम क्या कहेंगे, बोलिए, तेरे दिल में ईमान नहीं है। तेरे दिल में ईमान होता तो अजान की आवाज़ सुनते ही तेरे रोंगटे खड़े हो जाते, तेरे हाथ से ये तराजू गिर जाता और तू सीधा मस्जिद की तरफ चला जाता। आप अपने ऊपर ले, घर में कोई बड़ा है और आपको आवाज दे, अगर आप नहीं जाते चैन आता? दिल में गिल्ट तो रहता है ना। इसी तरह जब नमाज की अजान हो और बंदा अपनी जगह से ना हिले तो ये गुना नहीं है, ये ईमान नहीं है, ठीक है। ये एक वाकया लिखते हैं कि अहले ईमान के नजदीक अल्लाह के हुक्म की क्या अहमियत होती है। कहते हैं कि मैं रियाज में था, मुझे वहां एक मस्जिद में दर्स देना था, अभी नमाज में कुछ वक्त था। मैंने सोचा कि मैं इस दौरान एक अटैची केस खरीद लूं, चुनाचे मैं बाजार में गया। वहां एक दुकान पर एक क्लीन शेव नौजवान मुजाहर दीनदार भी नहीं लग रहा था मुझे अटैची केस दिखाने लगा। आखिरकार मुझे एक पसंद आ गया, इस नौजवान से मैंने भावताव करके 450 यानी 450 रियाल में खरीद लिया। इस दौरान जब मैं जेब से पैसे निकालकर गिन रहा था, अजान हो रही थी, इस नौजवान ने फौरन कहा खलास, खलास मीन खुलासी, जान छोड़ो यानी मामला खत्म। मैंने पूछा क्या मतलब, इसने जवाब दिया मैं अब ये अटैची केस नहीं बेच सकता। मैंने इसके काउंटर पर पैसे फेंक दिए और कहा अल्लाह के बंदे ये पैसे अपनी तिजोरी में रखो, मैं जा रहा हूँ। इसने कहा या शेख इत्तकिल्ला, اے شیخ اللہ سے ڈرو، اذان کے بعد اب میں یہ پیسے کیسے لے لوں؟ میں نے جواب دیا، تم نے یہ پیسے صرف تجوری ہی میں تو رکھنے ہیں. وہ کہنے لگا، یہ پیسے اب تجوری میں رکھنا میرے لیے حرام ہے. اب تم نماز کے بعد آنا اور یہ ڈچ کیس خرید لینا، یہ پیسے اس وقت میں تم سے لے لوں گا. میں نے اسے کہا، دیکھو میری بات سنو، نماز میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، مجھے یہ نماز نہیں پڑھنی، میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا جہاں جا کر مجھے درس دینا ہے. میں تمہارے پاس دوبارہ یہ اٹیچی کیس لینے نہیں آ سکوں گا. وہ کہنے لگا، یا شیخ، یہ اٹیچی کیس اس بازار کی ہر دکان پر ملتا ہے، آپ کہیں اور سے لے لیں، مجھے گناہگار نہ کریں. کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورۃ جمعہ کی آیت 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مطلب کہ کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے پکار لیا جائے تو دوڑ لگاؤ، جلدی کرو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف، اور کاروبار یعنی تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانتے ہو. حالانکہ دیکھیں، نہ تو وہ جمعہ تھا لیکن انہوں نے پھلی لے لی کہ وزر البئی چھوڑ دی. ہم اپنی مرضی کے حکم کو لے لیتے ہیں اور جو ہمارے عمل پہ آتا ہے اس کو اسکپ کرتے ہیں. اس نے پوری آیت میں صرف وزر البئی لے لیا. تو یہ ہے ایک رویہ کہ اتنی سی بات دل میں بیٹھ جائے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا، اب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجارت نہیں کروں گا. اللہ کے ذکر یعنی عبادت کی طرف دوڑے چلے آؤ. دوڑے چلے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے پھینک دو. ذرا آپ بھی تو لکھیے، آپ کیا پھینکنا ہوتا ہے آپ کو نماز کے وقت میں؟ یہ برتن پھینک دو، یہ چولہا بند کر دو، اس گاڑی کی سپیڈ ڈاؤن کر دو. چلیے لکھیے، یہاں اب اپنا بھی تو محاسبہ کرنا ہے کہ میری نمازیں کس کس چیز کی وجہ سے ڈیلے ہوتی ہیں. دیکھیے، آپ اس کو گناہ کہتے ہیں نا، اسلام اس کو کفر کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ لگے ہوئے اپنے کاموں میں. اس کے آگے پیسے تھے، چلو اس کو تو پھر بھی اتنی بڑی چیز دکھ رہی تھی جس کو چھوڑا. میں اور آپ کن وجوہات کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں؟ کم از کم 5 سیکنڈ یہاں اپنا محاسبہ کریں ہم سب. کیا واقعی میرا اللہ پر ایمان ہے؟ دیکھیں، یہ ایمان پختہ ہوتا ہے تو یہ ہوگا. بستروں سے کروٹیں ہٹ جاتی ہیں. ایسے بندہ بستر سے اٹھ کے بھاگتا ہے جیسے آگ لگ گئی اور بستر پہ نہیں لیٹ سکتا. سانپ بچھو کا شک پڑ جائے نا بستر پہ تو نیند نہیں آتی. ایک سچے مومن کو اللہ کا بلاوا سن کر بیٹھنا سوٹ نہیں کرتا. آج ہمارے اپنے کیا کیا بت ہیں، ہم اس کو بھی تو دیکھیں اور لکھ لیں جہاں عمل میں کمی آئے گی. یہ تو میں نے آپ کو پوری سیریز کے دوران جملہ یاد کروا کے بھیجنا ہے. میرے عمل کی کمی میرے ایمان کی کمی کی دلیل ہے. جہاں آپ کا کوئی عمل کم ہو گیا نا نیکی کا، آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا عمل کم ہے، آپ کے نہیں، میں بد نصیب ہوں، میرا ایمان کم ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ بات کہتے ہوئے اللہ نے میرے دل میں ڈالی. آپ اپنی ایک دو دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جاتی ہیں، بڑی پاؤش موڈ اور خوب خرچ کرنے والی. آپ بھی کل تک ایسی ہی تھی یا آج بھی ہیں مثلاً، لیکن پیسے تھوڑے ملے شوہر سے شاپنگ کے لیے. وہ آتی ہیں ہزاروں خرچ کرنے کی، آپ کو شوہر نے چند 100 پکڑا دیے کہ جائیے آپ بھی کچھ دیکھ لیجیے گا لینا. ایک لی انہوں نے چیز، دوسری لی، آپ کو بھی کہا لے لیں. جو ہی آپ نے ایک چیز لی، پرس میں دیکھا پیسے کوئی نہیں ہے. اب وہ آپ سے کہتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں. آپ بتائیے مجھے، آپ کی شاپنگ کی کمی کس بات کی دلیل ہے؟ پرس میں پیسے کوئی نہیں. بہت بے تکلفی ہوگی یا بہت ہی آپ ان کے ساتھ اوپن ہوں گے تو کہہ دیں گے بھی پیسے کوئی نہیں ہے. ورنہ عموماً دیکھا جائے تو لوگ چھپاتے ہیں، نہیں ضرورت نہیں ہے، بعد میں آؤں گی. بس یہاں لکھ لیجئے، جب پرس میں پیسوں کی دولت نہیں ہوتی نا تو ہماری خریداری کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہمارے دل کے بٹوے میں ایمان کی ریزگاری کم ہوتی ہے نا تو ہماری نیکیوں کی دھوم دھام ختم ہو جاتی ہے. لوگ بیچارے سمجھتے ہیں ہم سست ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم مجبور ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایڈورس حالات آ گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم بیمار ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہم پہ کوئی پابندی لگا دی، लोग समझते हैं खानदानी दबाव है, सास का बोझ है, यानी लोग हमें मजबूरियों की दलदल में फंसा देखते हैं, लेकिन वल्लाही 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 असल बात यह होती है कि हमारे अंदर ईमान ख़त्म हुआ होता है। और उसका ईमान जिसको पता है कि मेरे पास वक्त भी थोड़ा है, जैसे आप गए ही उस शहर में बस 2 घंटे थे और आपने दोबारा आना ही कोई नहीं है उधर, फिर तो बंदा कहता है उधार ही पकड़ लूँ, पर करूँ क्या, देगा मुझे कौन। ये जो तिजारत वाली बात आपने सुनी है, ये छोटी बात तो नहीं है। अगर आप में से किसी के कारोबारी ब्रदर्स हैं या बाप भाई बेटे, आप देखिए इन्हीं वजह से उनकी नमाजें कम होती। पहले कहते हैं मस्जिद में जमात से पढ़ेंगे, अजान से पहले चल पड़ेंगे, कस्टमर आ गया, चलो अभी तो अजान ही हुई है ना, लो 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 ये भी दे, लो बाजी तुम भी दो, क्या दिया, इतने में इकामत की आवाज़ आ गई, अब एक और आ गई शॉपिंग करने, चलो इकामत है खैर है बस अभी जाता हूँ, वो उसको भी भुगताया, अभी इकामत ख़त्म, अब अल्लाह अकबर हुई, अच्छा अब एक तीसरा कोई फितना आ गया, फिर क्या कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा दीन इतना सख्त नहीं है, आखिरी रकत में भी मिल गया जमात तो हो जाएगी, जब जाऊंगा 1 या 2 रकत पढ़ूंगा, 2 छोड़ दूंगा, बाद में पूरी करूंगा। और आप यकीन करें 4 रकतें भी छूट जाती हैं, अच्छा नमाज छूट गई, चलो ये दुकान पे 2 बंदे हैं ना, इनको भी साथ लगा के जमात करा लूंगा, बल्कि और फायदा होगा, वहां तो मैंने एक अकेले ने पढ़नी थी, यहां तो मैं पढ़ाऊंगा। और आपको तो नमाज कब पढ़ते हैं फिर वो, अगर वाकई पक्के नमाजी और ध्यान नमाज की तरफ लगाए, कुछ को तो याद ही नहीं रहता कि अच्छा ये नमाज का वक्त आया भी था, बाहर अंधेरा हो गया, ओ मैं तो अंदर ही मगन रहा। पक्के नमाजियों का हाल फिर यह है कि वो आखिरी वक्त के 2 ठोंगे, किस चीज की कमी है, सच बताइए आज उम्मत मुस्लिमा को देखें तो क्यों दिल रोता है। टांगे नंगी कब होती हैं, जब ईमान नहीं होता। लिबास चुस्त कब होते हैं, जब ईमान नहीं होता। लिख लें ईमान और अमल का साथ हमेशा का साथ है, एक की कमी दूसरे के ना होने की दलील है। आप 101 बुराई लिखें अपने इर्द गिर्द फैली हुई या अपने अंदर ही देख लें, ईमान की कमी की दलील है। बस सब आप देखिए कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को अहमियत नहीं देते। आज आपने अब बल्कि जब तक ये अकीदे का टॉपिक नहीं पूरा होगा ना, जितने भी दिन लगेंगे हम लगाएंगे इस पे बहुत सारे दिन, आपने खुद को पूछना है मेरा ईमान आज किधर है। और हदीस में आता है कि ईमान की 60 से 70 शाखें हैं, बेदा व सबून शोबतुन, और आखिरी आपने कहा वल हयात मिनल ईमान, हया भी ईमान की एक अलामत है, इसका सीधा ताल्लुक है। और याद रखिए इबलीस का पहला हमला आदम की हया पे हमला था कि कपड़े उतारो इनके, जब शैतान आपके लिबास को जरा खराब करता है ना, आपकी एक नॉट खुलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खुलने लगता है। फिकी मसाइल में जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो इसका बराह रास्त असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। अब हमारे यहाँ चूंकि फोखा ने ये बात कह दी कि ईमान अपनी जगह पर और अमल अपनी जगह पे, इस जुमले को हाईलाइट करके ना इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाएं, ताकि आपको पहली नज़र में ये जुमला याद हो जाए कि ये जुमला गलत है कि ईमान अपनी जगह पर अमल अपनी जगह पर। और ये जुमला लोग पता कैसे बोलते हैं, आपको क्या पता जी अगला अंदर से कितना नेक है। आप किसी की बात करें, आप कहते हैं देखें जी नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं आपको क्या पता अंदर से कितना नेक हो। आप कहते हैं देखें जरा इसका हिजाब किधर गया, देखो इसका लिबास, ये कोई लिबास है, वो कहते हैं तुम्हें क्या पता अंदर से ये कितनी नेक। और वो एक कुत्ते के बच्चे को पानी पिला के भी तो औरत जन्नत में गई थी, वो फाहिशा थी, वो तवाइफ थी, आपको क्या पता। तो ये धोखा है, ईमान अपनी जगह पर और अमल अपनी जगह पर।